الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے بلکہ اس کے 12واں دن ہے یہ مہینہ درحقیقت رمضان المبارک کا ایک مقدمہ ہے اور اس کے بارے میں احادیث میں بہت سے فضائل بھی وارد ہوئے ہیں ایک تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے اور اس لیے شعبان کے ہر دن میں روزہ رکھنا مستحب ہے بہتر ہے اور اس پر بڑے اجر و ثواب کی امید ہے اور حدیث میں یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا خاص اہتمام کیا کرو تاکہ رمضان المبارک کا چاند صحیح طریقے سے دیکھا جا سکے اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ شعبان کے دنوں کو گننے میں اتنے زیادہ احتیاط فرماتے تھے جو اور کسی مہینے میں نہیں فرماتے تھے کہ آج شعبان کی یہ تاریخ ہو گئی آج شعبان کا اتنے دن گزر گئے اس کو خصوصی طور پر یاد رکھتے تھے تاکہ جب 29واں دن آئے تو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جائے اور اس رمضان اس شعبان کے اندر جو 15ویں شب ہے یعنی جو 14 اور 15 کے درمیان جو رات آتی ہے اس کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے اردو میں اس کو شب برات کہتے ہیں شب برات نہیں ہے برات جو دولہا والوں کی ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ براءت ہے شب براءت اور یہ رات جو ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالی کے اعتبار سے تو سارے دن رات ایک جیسے ہیں ہر دن صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے رات کو غروب ہوتا ہے رات شام کو غروب ہوتا ہے پھر رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے چاند نکلتا ہے سارے سال میں یہی سلسلہ جاری رہتا ہے ہر دن ظاہری اعتبار سے دوسرے دن کے جیسا ہی ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص دن کو یا کسی خاص رات کو اپنی طرف سے کچھ تقدس عطا فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنی طرف سے تقدس عطا کرنے کی وجہ سے اس رات کی ایک فضیلت بن جاتی ہے یعنی اس میں عبادت کرنے کا ثواب اور راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے اور اس کی بظاہر حکمت یہ ہے کہ ہم لوگ الحمدللہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑا بہت اللہ نے توفیق دی تو قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں یا ذکر کر لیتے ہیں لیکن عام دنوں میں ہمارے بیشتر اوقات دنیاوی کاموں میں صرف ہوتے رہتے ہیں कोई ताजिर है तो तिजारत में लगा हुआ है, कोई मुलाजिम है तो मुलाजमत कर रहा है, कोई किसान है तो खेती बाड़ी में मशगूल है। हम दुनिया के इन कामों में जो अल्लाह ताला ने ही हमारे लिए जायज भी किए हैं अगर हुदूद में हो, और उनको बल्कि हमारे जिम्मे जरूरी करार दिया है कि भाई तुम अपनी रोजी कमाने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करो ताकि तुम अपने अपने आप का और अपने घर वालों का कोई हक अदा कर सको। लेकिन होता यह है कि जब हम इन कामों में मशगूल होते हैं तो अल्लाह जल्ला जलालुहु की तरफ हमारा हमारी तवज्जो और हमारा ध्यान और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक उसमें कमजोरी आ जाती। दिन रात यही सोच विचार है कि भाई मुझे मुलाजमत करनी है, मुझे तनख्वाह कितनी हो जाए, मेरी बढ़ जाए। कोई ये सोचता है कि मैं तिजारत कर रहा हूं तो किस तरह और ज्यादा मुनाफा कमाऊं, इस फिक्र में लगा रहता है और शबो रोज इसी धुन और ध्यान में गुजरते हैं। तो जब आदमी दुनिया के अंदर इतना मशगूल हो जाता है, चाहे जायज तरीके ही से मशगूल हो, उस वक्त उसका जो ध्यान है वो अपने अल्लाह से किसी कदर हट जाता है और अल्लाह ताला के साथ जो ताल्लुक होना चाहिए उस ताल्लुक में कमजोरी आ जाती है। होना तो ये चाहिए कि बंदे का हर वक्त राबता अपने अल्लाह से दुस्तवार हो, हर वक्त वो अल्लाह को याद करे, हर वक्त वो अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे, अपनी कोई हाजत हो तो अल्लाह ताला से मांगे और उसके साथ मुस्तकिल रिश्ता इबादत का, बंदगी का अपना उस्तवार रखे। लेकिन हमारे दुनियावी मशागिल, चाहे वो हलाल ही क्यों ना हो, वो हमें इस तसव्वुर से बादौकात दूर ले जाते हैं, भटका देते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला थोड़े थोड़े वक्फे से कुछ ऐसे दिन हमें आता फरमाते हैं, कुछ ऐसी रातें हमें आता फरमाते हैं जिसमें एक तरह से हमें बुलाया जाता है कि तुम कहां भटके जा रहे हो, जरा थोड़ी देर के लिए वापस आ जाओ और वापस आकर अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक जोड़ लो, उसको मजबूत कर लो, उसको मुस्तहकम बना लो। इसलिए अल्लाह तबारक बताला किसी खास दिन को फजीलत दे देते हैं, किसी खास रात को फजीलत दे देते हैं और मकसद ये होता है कि दुनियावी कामों में उलझे हुए इंसान को कुछ मौका दिया जाए कि वो दोबारा आकर तन्हाई में अपने परवरदिगार के साथ अपना रिश्ता उस्तवार कर ले। ये मकसद होता है। कभी कह दिया भाई जुल्हिज्जा का अशरा जो है वो बड़ी फजीलत रखता है, कभी कह दिया कि अरफे का दिन बड़ा फजीलत रखता है, उसमें रोजा रखा करो, कभी कह दिया कि मुहर्रम जो है अल्लाह तबारक व ताला का खास मुकद्दस महीना है और मुहर्रम के 10 तारीख को रोजा रखा करो, और कभी ये शाबान के अंदर कह दिया कि जो 15वीं रात है इसको हमने खुसूसी फजीलत अता फरमाई। ये खुसूसी फजीलत एक हदीस से नहीं, दसियों अहादीस से साबित है। आजकल बाद लोग ये कहते हैं कि शबे बरात के बारे में कोई हदीस सही नहीं है और ये बाद औकात ये नुक्ते नजर फैलाया जाता है कि इस रात की कोई अहमियत, खास अहमियत नहीं है, क्योंकि किसी सही हदीस में शबे बरात की फजीलत वारिद नहीं हुई और जो अहादीस आई हैं वो ज़ईफ हैं, कमजोर हैं। लेकिन खूब समझ लीजिए कि अगरचे इस शबे बरात की फजीलत में मुतअद्दिद अहादीस ज़ईफ हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ सही भी हैं और 17 सहाबे किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम से वो अहादीस मरवी हैं। 17 सहाबे किराम मुख्तलिफ روایات ہیں جن سے اس شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اور پھر امت کا تعامل بھی رہا ہے کہ علماء امت اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرنے پر زور دیا کرتے تھے اور اس میں خاص اہتمام کرتے تھے کہ خصوصی عبادت کی جائے. لہذا یہ سمجھنا کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں یہ خیال غلط ہے. احادیث سے ثابت ہے، 17 صحابہ کرام سے احادیث اس بارے میں مروی ہیں. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف سے خصوصی توجہ ہوتی ہے اپنے بندوں کی طرف. اور اس رات میں جب بندہ اللہ تبارک وتعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے تو اس مشغولی کو اللہ تبارک بتعالیٰ تقریباً وہ درجہ دیتے ہیں جیسے شب قدر میں عبادت کا جو درجہ ہوتا ہے، تقریباً وہ درجہ شب برات میں بندوں کو دیا جاتا ہے. اور اس رات کے اندر بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، اگرچہ وہ اتنی زیادہ پختہ نہیں ہے، کہ سال بھر میں جو بچہ کون پیدا ہوگا وہ اس دن میں اس رات میں لکھ دیا جاتا ہے، اور کون اس سال میں وفات پائے گا یہ بھی لکھ دیا. لکھا ہوا تو پہلے ہی سے ہے تقدیر میں، لیکن فرشتوں کو اس کی خبر دے دی جاتی ہے، یہ بھی بعض روایتوں میں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک وتعالیٰ سے تعلق جوڑنے میں استعمال کیا جائے. اب ہمارے ہاں اس شیطان جب دیکھتا ہے کہ کوئی مسلمانوں کو کوئی فضیلت حاصل ہونے والی ہے تو کوئی نہ کوئی اس میں کھنڈت ڈالتا ہے. تو کھنڈت یہ ڈال دی کہ بھائی شب برات کے اندر چراغاں ہونے چاہیے، پٹاخے چھوڑنے چاہیے اور آتش بازی ہونی چاہیے. یہ خامخواہ کی باتیں جس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں، جس کا کوئی تعلق قرآن و حدیث سے نہیں، یہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلا دی گئیں. چنانچہ شب برات کا جو بہترین وقت ہے وہ ان فضول کاموں میں، بلکہ ناجائز کاموں میں صرف کیا جاتا ہے. الحمدللہ اب اس کا زیادہ رواج نہیں رہا، کسی زمانے میں تو اس کا بہت ہی زیادہ پھیلاؤ تھا، اور ہمارے کراچی کی بوہری بازار وہ اسی میں تباہ ہوا تھا، اسی آتش بازی میں آگ لگ گئی تھی، پورا بازار تباہ ہو گیا تھا. تو الحمدللہ اب اتنا زیادہ نہیں، لیکن ہے اب بھی. تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ درحقیقت ہندوؤں کی نقل ہے، ہندوؤں کی دیوالی کی نقل ہے، کہ ہندو دیوالی بناتے تھے، اس میں چراغ روشن کرتے تھے، تو مسلمانوں نے شب برات کے اندر یا چراغ کرنا اور پٹاخے چھوڑنا اور آتش بازی اس کو اختیار کر لیا، جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں بلکہ ناجائز کام ہے. دوسرا یہ کہ کچھ خامخواہ کی رسمیں اس دن کے لیے مقرر کر لی گئیں کہ بھئی شب برات میں حلوہ ضرور پکنا چاہیے، حلوہ نہ ہوا تو شب برات ہی نہیں ہوئی. یہ تصور بھی بالکل غلط، اس کا کوئی تعلق شریعت سے، اسلام سے، قرآن سے، سنت سے کہیں سے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک وتعالیٰ یہ رات عطا فرمائے تو آدمی عام راتوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو. اس میں سب سے زیادہ افضل یہ ہے کہ آدمی اس رات میں نفلیں پڑھے، نفلیں پڑھے جتنی ہو سکے. ویسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا कि आप 8 रकतें तहज्जुद की पढ़ा करते थे और कभी कभी कुछ ज्यादा भी पढ़ लेते थे, लेकिन आम तौर से 8 रकतें पढ़ते थे, लेकिन वो 8 रकतें बहुत लंबी होती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि रात की नमाज आप इस तरह पढ़ते थे कि पहले 2 रकतें, फिर 2 रकतें मिलाकर 4 रकतें, और 4 रकतें कैसी होती थी उसकी, उनकी हुस्न और उनकी, उनके लंबाई के बारे में आप मुझसे मत पूछो, मैं बयान नहीं कर सकती कितनी लंबी रकतें पढ़ते थे आप, कितना लंबा क्याम, कितना लंबा रुकू, कितना लंबा सजदा थी। तो वो 8 रकतें, लेकिन वो 8 रकतें तवील क्याम के साथ और तवील रुकू के साथ, तवील सजदे के साथ आप पढ़ा करते थे। अब अल्लाह ताला जिनको तौफीक अता फरमा देता है तहज्जुद की नमाज की, वो अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ते हैं। और अगर आम दिनों में हमें मौका नहीं मिलता तहज्जुद पढ़ने का, तो ये रात कम से कम ऐसी है कि इसमें एहतमाम करे आदमी ज्यादा से ज्यादा नफले पढ़ने का। और नफले बेहतर यह है, जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि सुन्नत यह है इन नफलों में कि लंबा क्याम हो। लंबा क्याम उस वक्त होगा जब कुरान करीम की लंबी सूरतें याद हों। जिनको लंबी सूरतें याद हैं, हाफिज हैं या हाफिज नहीं हैं लेकिन लंबी सूरतें याद हैं, तो वो उसमें तिलावत करें। और अगर लंबी सूरतें याद नहीं हैं तो मेरे भाइयों कोशिश तो कर लो कि अगर इस साल याद नहीं है तो अगले साल जब हमें मौका दे, और शब शब कदर आने वाली है रमजान की, उसमें अल्लाह ताला मौका दे तो हम लंबी सूरतें पढ़ा करें। कम से कम अम का पारा तो याद हो जाए। हर मुसलमान को चाहिए कि कम से कम अम का पारा तो वो हिफ्ज कर ले, ताकि एक रकत में उसने सूरह नबा पढ़ ली, दूसरे में सूरह नाजियात पढ़ ली, तीसरे में सूरह अबस पढ़ ली, जो जरा निस्बतन लंबी सूरतें हैं वो पढ़ने को हर मुसलमान को चाहिए। ये कुछ आलिम का, हाफिजी का काम नहीं है, ये हर मुसलमान को चाहिए कि वो लंबी सूरतें याद करे, और इस नियत से याद करे कि नफलों में पढ़ा करूंगा, और फिर उसमें रुकू, रुकू भी लंबा। रुकू में आमतौर से सुभान रब्बिल अजीम पढ़ते हैं, वो तो है ही मसनून, लेकिन अगर उसमें और तस्बीहात भी पढ़े तो बहुत ही अच्छा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये सब कुछ पढ़ सकते हैं। और सजदे में सुभान रब्बिल आला आमतौर से पढ़ा जाता है और वही मसनून भी है, लेकिन उसमें दुआ भी, सजदे में दुआएं, मासूर दुआएं जो कुरान में आई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार मसलन, और वो दुआएं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है, मुनाजात मकबूल में छपी हुई है, वो दुआएं मांगो अल्लाह तबारक व तआला से। तो ज्यादा से ज्यादा नफलें पढ़ना तन्हाई में, जमात इसमें नहीं है। ये रात जलसों की नहीं है, जुलूसों की नहीं है, ये इज्तिमाआत की नहीं है। सारा वक्त बदावकात बस इसी मस्जिद के अंदर वो इज्तिमा हो रहा है, कव्वाली हो रही है, या उसमें खाने पक रहे हैं, देगे चढ़ रही हैं, इसी में वक्त बर्बाद कर दिया जाता है। ये रात तो ऐसी है कि बस बंदा हो और उसका अल्लाह हो, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में बैठकर और नफलों के अंदर, और नफलों के साथ कुरान करीम की तिलावत जितनी हो सके, और दुआएं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल हैं, मुनाजात मकबूल के अंदर आई हैं, वो दुआएं कसरत से की जाएं, और साथ साथ अपनी हाजतों के लिए भी, अपनी जरूरियात के लिए भी, ख्वाह वो दीनी जरूरत हो, ख्वाह वो दुनियावी जरूरत हो, वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश की जाए और अल्लाह तआला से वो दुआ मांगी जाए। जो जब अल्लाह तबारक व तआला ने ये रात लिखी ही इसलिए है, रखी ही इसलिए है कि उसके बंदे उसके करीब आए, उसके बंदे उससे रुजू करें, उसके साथ अपना ताल्लुक जोड़ें, तो उसमें जब बंदा दुआ करेगा तो क्या वो रद्द कर देगा? क्या एक तरफ तो फरमा रहे आओ आओ मुझसे मांगो, आओ मुझसे अपनी हाजतों की दुआ करो, और जब आ गए तो वो रद्द कर दे कि जब भाग जाओ मैं नहीं मानता तुम्हारी दुआ कबूल करता। अल्लाह ताला की शान रहीमी से ये बात बहुत बईद है, लिहाजा इसमें उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह जो दुआएं की जाएंगी वो बारगाह इलाही में कबूल होंगी, और जब कबूल होंगी तो उसमें ये दुआ भी मांगो कि या अल्लाह इस रात में तो आपने तौफीक दे दी हमें अपने बारगाह में हाजिर होने की, आइंदा भी तौफीक अता फरमा दीजिए, ये मांगो या अल्लाह मैं मेरी जिंदगी अपनी रजा के मुताबिक बना दीजिए, मुझे दीन के सही अहकाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, ये मांगो। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर इंशाल्लाह शब बरात के बाद भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपना ताल्लुक अता फरमाएंगे, और यह भी मांगो कि रमजान आ रहा है या अल्लाह हमें रमजान तक पहुंचा दीजिए और रमजान की बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाइए, ऐसे आमाल की तौफीक अता फरमाइए कि जो रमजान के अंदर आपकी बारगाह में काबिल कबूल हों, ये मांगो। और भाई इस वक्त पूरे आलम इस्लाम के लिए भी दुआ मांगने की जरूरत है, हर मुसलमान के लिए को चाहिए, इस वक्त आलम इस्लाम शदीद तहोबाला है, शदीद तौर पर तहोबाला है, खुद हमारे मुल्क के अंदर आप देख रहे हो क्या तमाशा लगा हुआ है, और आलम इस्लाम के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमान पिसे हुए हैं, खासतौर पर आजकल फलस्तीन के अंदर मुजाहिदीन अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं, और वहां के मासूम बेगुनाह शहरी 30,000 के करीब शहरी शहीद हो चुके, जिनमें अक्सरियत बच्चों और औरतों की है, वो बच्चे जिन्होंने अभी अभी जिंदगी का मजा ही नहीं चखा, ताजा ताजा उनकी विलादत हुई है, उनको बमबारी से मारा जा रहा है, और उनके इसराइल के मुकाबले में फलस्तीन के मुजाहिदीन वो अपनी जान की बाजी लगाए हुए हैं, बड़ी इस्तेकामत के साथ डटकर उसका मुकाबला कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 4.5 महीने हो चुके हैं, और वो अपनी सुरंगों से इसराइल को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, इसराइल का गुरूर खाक में मिल चुका। ऐसे मौके पर हर मुसलमान का फर्ज है कि अगर वो कुछ उनकी मदद नहीं कर सकता, अव्वल तो मदद जो हो सके करनी चाहिए, मैं बार बार मुतवज्जे करता हूं कि अगर कम से कम अपने पैसों में से कुछ पैसे उनकी मदद के लिए खर्च करने चाहिए, और अगर वो नहीं तो कम से कम ये इसमें क्या जाता है किसी आदमी का कि उनके हक में दुआ करे अल्लाह ताला से रोकर गिड़गिड़ाकर। ये शबे बरात खास तौर पर हमसे तकाजा करती है कि हम उनकी फतह के लिए और उन इसराइल की तबाही के लिए और इसराइल जो उनके ऊपर जुल्म ढा रहा है उस जुल्म के खात्मे के लिए अल्लाह ताला के सामने रोएं गिड़गिड़ाएं और गिड़गिड़ाकर माफी मांगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल व करम से हमें शाबान का सही हक अदा करने की तौफीक अदा फरमाए और इस रात की बरकत अदा फरमाए। वाकर दावाना।
www.dasquran.com